आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में लोकायुक्त और सूचना आयुक्त समेत विभिन्न आयोगों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 4 सप्ताह में होगी पूरी। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय को कराया अवगत। राज्य के सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस में नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किए गाइडलाइन। 16 फरवरी तक भरे जाएंगे आवेदन। स्वास्थ्य विभाग ने रांची सदर अस्पताल में हाई डिपेंडेंसी यूनिट खोलने का लिया निर्णय। गंभीर मरीजों को मिलेगी इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं। धनबाद का तोपचांची झील अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में होगा विकसित। 184 करोड़ रुपए होंगे खर्च, पर्यटन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। और रांची में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता आज से शुरू। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी भी झारखंड को मिली। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में लोकायुक्त और सूचना आयुक्त समेत विभिन्न आयोगों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 4 सप्ताह के अंदर पूरी कर ली जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की पीठ को महाधिवक्ता ने बताया कि नियुक्ति को लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत बाल वाटिका और कक्षा 1 में 40-40 बच्चों का नामांकन होगा। इसके लिए 16 फरवरी तक आवेदन जमा होंगे। संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालयवार प्राप्त होने वाले आवेदनों को राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल रांची में 26 बिस्तरों की क्षमता वाले हाई डिपेंडेंसी यूनिट खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए अत्याधुनिक बिस्तर और चिकित्सीय उपकरण खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इस यूनिट में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को जांच और इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह यूनिट अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट और क्रिटिकल केयर यूनिट से अलग होगी। दूसरी ओर रिम्स रांची में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को निबंधन के तत्काल बाद जारी करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। इस विशेष श्रृंखला में आज मिशन अमृत सरोवर पर नजर डालते हैं, जिसका उद्देश्य देश में जलाशयों का निर्माण करना और उन्हें पुनर्जीवित करना है। एक रिपोर्ट।
मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत साल 2022 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण और पुराने तालाबों का पुनर्जीवन करना था। हर अमृत सरोवर कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ और लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर पानी जमा करने की क्षमता होती है। प्रगति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मिशन अमृत सरोवर की नियमित समीक्षा की गई। इस डिजिटल मंच पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ जुड़े, ताकि जमीन की उपलब्धता, विभागों के बीच समन्वय और जारी करने जैसी समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव रोहिणी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति के माध्यम से की गई समीक्षा से सभी मंत्रालयों के बीच तालमेल मजबूत हुआ है।
प्रधानमंत्री जी हमेशा समग्र सरकार गोल ऑफ नेशन की बात करते हैं, उस हिसाब से 50,000 से भी ऊपर जाके 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर जो है बनाए गए पूरे देश में। और अब यह अमृत सरोवर जो है उनकी प्रगति मीटिंग के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा करते हैं तो उससे और भी ज्यादा समन्वय जो है मन सबके बीच में बढ़ जाता है।
इस योजना के तहत 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्रगति की निगरानी के बाद काम में तेजी आई और अब तक देश भर में 68,800 से अधिक अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। इन जलाशयों के पास 23 लाख से अधिक पेड़ भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा का ही परिणाम है कि अमृत सरोवर आज जल संकट से निपटने का प्रभावी समाधान बन गया है और सिंचाई को नया आधार मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
धनबाद के तोपचांची झील को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। झील परिसर क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य का संरक्षण देने के साथ पर्यटकों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पर्यटन विभाग ने बताया कि इस पर लगभग 184 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विकास आयोग की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकरण को इस परियोजना का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य के पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रांची, गोड्डा और साहिबगंज में 2000 से ज्यादा सिविल डिफेंस स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस सिलसिले में पूर्वी सिंहभूम में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर अर्णव मिश्रा ने बताया कि प्रशिक्षण अवधि में चयनित स्वयं सेवकों को मानदेय भी मिलेगा।
बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएं, अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग प्राप्त करें, जिससे कि आने वाली किसी भी कंडीशन के लिए हम लोग वेल प्रिपेयर्ड रहें, जिससे कि बेटर कंट्रोल सिस्टम में स्थापित कर पाएं। यही एक सिविल डिफेंस का एक मेजर रोल है।
हजारीबाग जिले में डालसा की ओर से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने बताया कि 12 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के जरिए लोगों को नशा सेवन से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
से यस टू लाइफ नो ड्रग जागरूकता के अभियान, तो पहले पब्लिक सोसाइटी में जाके इंटरेक्शन करना है और स्कूल में जाके नाटक के जरिए उन लोग को मैसेज दिलवाना है कि ड्रग को कैसे को छुटकारा मिल सके।
शेयर बाजार, घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह गिरावट के साथ कार्य कर रहे हैं। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 197 अंक गिरकर 85,248 पर और निफ्टी 25 अंक गिरकर 26,224 पर रहा। रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने का भाव 1,27,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,60,000 रुपए प्रति किलो है। हजारीबाग में कड़ाके की ठंड को देखते हुए डालसा द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया जा रहा है। डालसा के सचिव गौरव खुराना ने बताया कि न्यायिक पदाधिकारी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
बस हमारा थोड़ा सा ये फोकस ज्यादा रहता है कि जो सच में जरूरतमंद है और जो इस ठंड में परेशान है उसको हम दे सकें। कोर्ट आर्ट्स के बाद मैं अपने स्टाफ के साथ निकलता हूँ, शहर में घूमते हैं हम लोग और हमको जो जरूरतमंद लगता है कोशिश करते हैं कि उन तक हम पहुँच पाए। बस एक छोटी सी हमारी ये प्रयास कह लीजिए, हमारा दायित्व तो है।
रांची के खेलगांव स्थित टिकैत उमराव स्टेडियम में आज से 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के कुल 639 तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 338 बालक और 301 बालिका खिलाड़ी हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से किया जा रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी भी झारखंड को सौंपी गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लोकायुक्त और सूचना आयुक्त समेत विभिन्न आयोगों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया 4 सप्ताह में होगी पूरी। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय को कराया अवगत। राज्य के सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस में नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किए गाइडलाइन। 16 फरवरी तक भरे जाएंगे आवेदन। स्वास्थ्य विभाग ने रांची सदर अस्पताल में हाई डिपेंडेंसी यूनिट खोलने का लिया निर्णय। गंभीर मरीजों को मिलेगी इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं। धनबाद का तोपचांची झील अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में होगा विकसित। 184 करोड़ रुपए होंगे खर्च। पर्यटन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। और रांची में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता आज से शुरू। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी भी झारखंड को मिली। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।